अर्पण रेडियो पर प्रस्तुत है लेखक जयशंकर की लिखी कहानी अन्ना। वाचक स्वर है सीमा सिंह का।
डॉक्टर डायस के पुराने और पीले मकान के बरामदे की रोशनी घर के आंगन के फर्श पर थमी रहती। रोशनी के उस दायरे में अन्ना और लिंडा देर तक चहलकदमी करते रहते। उन बहनों में लिंडा बड़ी थी। अन्ना का रंग सांवला था और कद बहन से ऊंचा। वो चश्मा पहने रहती और तरह तरह की सूती पोशाकें। हमारे शहर की गर्मियों की रातों का जो वक्त उन बहनों की चहलकदमी का होता, वही वक्त जिंगो का डॉक्टर के सामने की दुबली सड़क के दूसरे किनारे पर रह रहे बूढ़े दंपति के लिए पुराण पढ़ने का होता। वो बीच बीच में शिव और शक्ति या शंकर और पार्वती को पन्नों पर छोड़ अन्ना की तरफ देखने लगता। बूढ़ा उस अंतराल को सह नहीं पाता और लड़का किताब के प्रिंट के दोष का जिक्र करता। वो हर दिन इस बहाने का सहारा लेता। उस दक्षिण भारतीय बूढ़े के वर्षों पुराने वे धार्मिक ग्रंथ पीले पड़ गए थे, फट रहे थे। उन पुराणों को वो पति और पत्नी के लिए पढ़ता था, लेकिन बीमार बुढ़िया को उन्हें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रहती। वो पढ़ता रहता और वो बुढ़िया गठिए की अपनी पुरानी पीड़ा को व्यक्त करती रहती। जब उसका बीमारी और बुढ़ापे का रोना बूढ़े के लिए असहनीय हो जाता, तब वो जिंगो को पढ़ना रोकने के लिए कहता। बुढ़िया के करीब जाकर सांत्वना के कुछ वाक्य दोहराता और एक तरह की हताशा के साथ अपनी आराम कुर्सी पर लौटाता। बुढ़िया की पीड़ा के उस वक्त में वो अपने बैंत की कुर्सी से उन बहनों को देखता रहता। बूढ़ा लौट आता और पुराण अपनी जगह से फिर शुरू हो जाता। पुराण के उस पाठ में कई तरह की बाधाएं आती रहती और हर शाम पुराण और पीड़ा का, बूढ़ों और बहनों का, रात और रोशनी का ये सिलसिला जारी रहता। वे उसकी मैट्रिक की परीक्षा के बाद की खाली शामें थीं और रात के उस समय में उसकी माँ बनारस से आए किसी कथावाचक को सुनने हर रोज़ गीता मंदिर जाती थी। जिंगो के अलावा गली के उस पुराने मकान में माँ ही थी जो अपनी पेंशन से, औरतों की पोशाकें सीने से, अपना और अपने 15 बरस के लड़के का गुजारा करती थी। लड़का जब 3 बरस का रहा होगा तब उसके युवा पिता की मृत्यु हो गई। वे रेलवे में क्लर्क रहे थे और उसकी माँ को नौकरी भी मिल जाती, लेकिन वो अपना सारा समय अपने बच्चे की देखभाल में अपनी धार्मिक निष्ठाओं के साथ बिताना चाहती थी। पति की अकस्मात मौत के कुछ दिनों बाद उसने सिलाई केंद्र में सीना सीखा और अपनी मशीन खरीदकर दूसरों के कपड़े तैयार करने लगी। ये वक्त था जब इस शहर की नदी पर पुल खड़ा किया जा रहा था और मजदूरों की एक बड़ी और अस्थायी बस्ती लड़के के पुश्तैनी मकान के आसपास बसने लगी थी। उस पुल के खड़े होने की, उस इलाके के बसने की और उससे बस्ती में आए बदलावों की एक अलग कहानी है, किंतु मेरी दिलचस्पी उस दौर में नहीं, उस दौर में रह रही 15 बरस की अन्ना और 15 बरस के ही जिंगो में है, और सिर्फ उनके जीवन के कुछ महीनों में जो गर्मियों के थे और जिन दिनों शहर तपता रहता था, वहाँ की नदी सूखती रहती थी। जिंगो के पिता गुजर चुके थे और अन्ना के पिता शहर से 3 घंटों की दूरी पर स्थित आदिवासियों के इलाके में एक कस्बाती अस्पताल के सरकारी डॉक्टर थे, जो वीकेंड में अपने घर आते और 24 घंटे शहर में बिता कर लौट जाते। अन्ना की माँ रामकृष्ण मिशन के स्कूल में अंग्रेजी की अध्यापिका थी और वो भी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी के अपने स्कूल में बस से जाती और लौटती थी। उनकी 2 लड़कियों में से अन्ना मैट्रिक का इम्तहान दे चुकी थी और लिंडा साइंस कॉलेज में अपना पहला साल बिता चुकी थी। अब हमारे पात्रों की छुट्टियों के दिन थे और उन दिनों में लंबी छुट्टियों के दिनों की शांति, लापरवाही, बोरियत और जीने की इच्छाएँ और उदासी दबी थी। लड़के ने जीने की इस जीवंत और जिद्दी उदासी के बीच ही अन्ना को देखना शुरू किया, अन्ना को चाहना शुरू किया। उसकी इस लालसा के जोखिम और उसकी सीमाओं को वो थोड़ा बहुत महसूस भी करता, लेकिन उस दिशा में कोशिश करने की कोशिश उसके साथ हमेशा रहती। अन्ना बहुत सुंदर तो नहीं ही थी, सांवले रंग और लंबे कद के कारण, आँखों पर चढ़े चश्मे और स्वस्थ शरीर के कारण उस दुबले पतले लड़के को हमेशा महसूस होता कि वो एक अजनबी अर्थहीन आकांक्षा को भीतर पाले हुए है। वो अपनी अराजक आकांक्षा के अंधेरे को देख नहीं पा रहा है और ईसाई होने, एक स्वतंत्र किस्म के परिवार से आने के बाद भी धर्म और वर्ग से बनती अन्ना की अपनी मजबूरियाँ होंगी और वो खामख्वाह एक हताशा गली में एक अंधेरी सुरंग में फेंक दिया जाएगा। ये डर था, किसी को प्रेम करने की शुरुआत के वक्त का डर। वो अपने प्रेम की पीड़ा और प्रतीक्षा के अलावा अपने इस डर के साथ भी रहता। पब्लिक लाइब्रेरी की मेज़ पर पड़े अखबारों पर, बूढ़ों के घर के पुराणों के पन्नों पर या अपने घर की सकरी सीढ़ियों पर उसका ये डर उसके साथ हो जाता। लड़के ने प्रेम को केंद्र में रखकर बनाई गई कुछ उदास उदासी पॉपुलर फिल्में भी देखी थीं, कुछ भावुक किस्म के बांग्ला उपन्यासों के घटिया अनुवाद पढ़े थे। पढ़ने में, अपनी स्कूल की पढ़ाई में उसका इतना मन था कि वो बहुत कम लोगों से मिलता, बहुत कम जगहों पर जाता। दोस्तों के नाम पर उसका एक दोस्त कज़िन ही था, जो खुद एक अंतर्मुखी किस्म का आलसी और आवारा लड़का था। वो छिप छिप कर सिगरेट पीता था और ऐसी फिल्में देखता जो उसकी उम्र के लड़कों के लिए वर्जित थी। लड़के ने चोरी छिपे सिगरेट पीना कज़िन की संगत में शुरू किया था। कुछ अश्लील पत्रिकाओं से लड़के की पहचान अपने कज़िन की दोस्ती से ही हुई थी। फिर एक दिन जिंगो रामकृष्ण मठ की लाइब्रेरी से लौटा तो उसने अन्ना को अपने घर में अपनी माँ के साथ देखा। अन्ना को माँ से उस बातचीत में मशगूल देख लड़के को आश्चर्य भी मिला और आनंद भी। उसने दूसरे कमरे में जाकर अपने बिखरे बाल संवारे, अपनी कमीज़ को ठीक ठाक किया और पहले कमरे में माँ, मशीन और अन्ना के करीब बैठ गया। नाश्ते में देर लगेगी, बेबी का एक काम है, माँ ने कहा था। आंटी कोई जल्दी नहीं है, ये सब मम्मी की ड्रेस हैं और ट्रंक में पड़े थे, अन्ना कह रही थी। मैंने मठ में अभी अभी प्रसाद खाया है, मुझे जरा भी भूख नहीं है, लड़के ने झूठ गढ़ा था ताकि अन्ना कुछ देर वहाँ बैठी रह सके, वो उससे कुछ बातचीत कर सके और उसके साथ को महसूस कर सके। क्या तुम रोज़ लाइब्रेरी जाते हो? छुट्टियों में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आज की खास खबर क्या है? अपने चिड़ियाघर की शेरनी ने बच्चे दिए हैं। सच? अन्ना हंस रही थी और माँ भी। तब उसने सोचा था कि क्या वो वाटरगेट कांड के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, तब वो ऐसी हंसी का पात्र तो नहीं बनता। लेकिन जब वो अपनी इस भूल को सुधारने की सोच ही रहा था कि अन्ना ने कहा था, क्या आज तो हमारे साथ चिड़ियाघर चलोगे? बहुत पहले मैंने कान्हा के जंगल में शेर के बच्चों को देखा था, मैं मम्मी से बात करूँगी, लिंडा भी साथ आएगी। कितना अच्छा रहेगा, क्या हम इसी वक्त नहीं चल सकते? अभी धूप चढ़ाई है, शाम को ठीक रहेगा, माँ ने कहा था। बाहर गली के पत्थरों पर धूप का विस्तार था। पीली दीवार के करीब भूरी और गर्भवती गाय खड़ी थी। उस वक्त गाय के उस बेडोल पेट को देखकर भी लड़के को अच्छा लगा। मशीन चल रही थी, अन्ना बीच बीच में किसी बात पर हंसने लगती। किसी कस्बे के दर्जी की सनक बताने के लिए वो किस्सा सुना रही थी कि कैसे कस्बाती बच्चे उस बूढ़े दर्जी को रावण कहकर चिढ़ाते थे। वो किसी तरह देसी दारू का दीवाना था और कितने जल्दी कपड़े तैयार करता था। अन्ना की बिखरी बहकी बातों से लड़के की माँ हंस रही थी, जो लड़के के लिए कुछ अटपटा सा अनुभव था। उसकी माँ को बहुत कम हंसी आती। अन्ना हिंदी में भी सीधे और साफ वाक्य बोलती और उसके उच्चारण उस बस्ती के दूसरे एंग्लो इंडियन परिवारों की तरह अटपटे और अशुद्ध नहीं थे। वो बोलते वक्त बीच बीच में ऊपर देखने लगती और उसके कुछ शब्द ऊपर देखते हुए ही निकलते। शुरुआत में जिंगो को लगता था कि वो ऊपर छत होती है या आसमान या किसी वृक्ष का विस्तार, और वो इस तरह देखती है कि जैसे वहाँ कोई बैठा उसे सुन रहा है। तब उसने अन्ना से इस आदत के बारे में पूछा था और उसने बताया कि बचपन में जिस गांव के गिरजे में वो प्रार्थना के लिए जाती थी, वहाँ का पादरी हमेशा ऊपर देखकर कहता था, जैसे कि वो मनुष्यों से नहीं ईश्वर से बात कर रहा हो। और वो घर लौटकर केरल के उस बूढ़े पादरी की नकल उतारती और उसके लिए डांट खाती। फिर धीरे धीरे वो अपनी सहेलियों के बीच उस पादरी की नकल करने लगी और उसकी भी आदत उसी तरह बात करने की हो गई। उसी शाम को उन दोनों बहनों के साथ म्यूज़ियम के पिछवाड़े जंगली पगडंडी से वो चिड़ियाघर गया था। पगडंडी की एक तरफ झाड़ियाँ थीं और दूसरी तरफ पुरानी और लंबी दीवार। दीवार पर कहीं कहीं घास उगाई थी और कहीं कहीं पेड़। वहीं रानी विक्टोरिया की विशालकाय सफ़ेद मूर्ति के साथ साथ जैन तीर्थंकरों की कुछ प्रतिमाएं भी रखी थीं। वो सूनी और जंगली पगडंडी जहाँ ख़त्म होती थी, वहाँ से म्योर मेमोरियल अस्पताल शुरू होता। उसी जगह पर उन तीनों ने चिड़ियाघर के शेर या शेरनी की दहाड़ने की आवाज़ें सुनी थीं और उनको देखने की पगली उत्सुकता में ही वे अस्पताल के गलियारे से ही चिड़ियाघर की तरफ निकले थे। गलियारे में और उसके आसपास के इलाके में मरीज थे और उनके रिश्तेदार नर्सें थीं और उनके रफ्तार से बढ़ते कदम। अन्ना का दुर्भाग्य रहा कि अंधेरे के पूरी तरह उतरने तक की प्रतीक्षा के बाद भी वो शेरनी के बच्चों को नहीं देख पाई। वे पिंजरे के दूसरे ओर अंधेरे हिस्से में लकड़ी के तख्त पर सोए रहे होंगे। उस शाम वे बच्चे दिख जाते तब दूसरे दिन वो भी लिंडा के बिना वो अन्ना के साथ कहाँ जा पाता। दूसरे दिन सुबह के वक्त अन्ना के साथ बस में बैठते वक्त उसने उसके झोले में छोटा सा कैमरा भी देखा था। सफ़ेद रंग के खादी के सलवार कुर्ते में एक तरह की कैप लगाए हुए अन्ना किसी सैलानी सी नज़र आ रही थी। लड़के ने हल्के नीले रंग की टी शर्ट पहनी थी जो उसके दुबले पतले और लंबे शरीर पर जचती नहीं थी। बस ने उन्हें जहाँ उतारा वहाँ बंजारों के तंबू थे और आसपास दो ऊँट बैठे हुए थे। अन्ना ने उन घुमक्कड़ों के एक बच्चे को बैठे हुए ऊँट पर बिठाकर तस्वीर खींची थी। इमली के चार पांच पेड़ों के करीब नाला था और नाले से थोड़ी दूर बहुत पुराना कटघरा जिसमें शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। धूप के चौकोर इलाके के बाद छाया का इलाका था जहाँ शेरनी और उसके नवजात शिशु बैठे थे। अन्ना उनकी तरफ देर तक देखती रही। उसने उनकी कुछ तस्वीरें भी खींची। बाद में उन दोनों ने अशोक की लंबी छायाओं के नीचे बैठे हुए अन्ना के झोले में रखे सैंडविच और केले खाए, थर्मस से खूब ठंडा पानी पिया और घर लौटने के लिए बस स्टॉप की तरफ निकल पड़े। उसके बाद अन्ना अक्सर उसके घर आ जाती थी या वो अन्ना के घर चला जाता। कभी घर में ही देर देर तक बातचीत हो जाती और कभी कभी शाम के वक्त वे दोनों काल भैरव के मंदिर तक सैर के लिए निकल जाते। अन्ना बहुत कुछ बताती रहती उन जगहों के बारे में जहाँ वो उन 15 वर्षों में रहती आई थी, उन लोगों के बारे में जिनके साथ उसके दिन बीतते रहे थे। अन्ना से एकदम अलग लिंडा ज़्यादातर समय खामोश रहती। उसके चेहरे पर बहुत कम हंसी आती और लड़का सोचता कि कभी कभार भी वो दूसरों का मन रखने के लिए ही हंसती है। अन्ना छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा हंसती। हंसते हंसते ही अपनी अध्यापिकाओं की, अपनी सहेलियों की नकल उतारती। ताश का खेल चल रहा होता, मिसेस डायस के पास हरा दिलाने वाले पत्ते जाते और अपनी मम्मी की उस निराशा को वो पढ़ लेती। वो उस निराशा को छेड़ने लगती, उस उदासी पर हंसने लगती। काल भैरव के मंदिर का पुजारी किस तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है ये बताते हुए लोगों के बीच जीने का एकदम नया उत्साह, एकदम नया अंदाज पैदा कर पाती। उसके साथ होने में उसकी या अपने घर की छतों के नीचे लड़के की वो गर्मियाँ, उसकी लंबी छुट्टियाँ इस तरह बीत रही थीं कि वो और कुछ नहीं कर पाता था। उसका कज़िन चाहता कि वे बहुत दूर किसी ढाबे में जाकर बियर पिएं, सिगरेट पीते हुए इधर उधर की गपशप करते रहें या दूसरे इलाकों की लड़कियों को देखने के लिए साइकिल पर निकलें। लेकिन जिंगो था कि हर वक्त अन्ना, अन्ना और सिर्फ अन्ना की आस लगाए बैठा रहता। वे दक्षिण भारतीय बूढ़े भी पुराणों को सुनने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते। लाइब्रेरी के ग्रंथपाल उसके मठ में न आने की शिकायत करते। उसकी माँ सोचती कि वो दिन में पुस्तकें पढ़ता रहता है और शाम में घर से बाहर निकल जाता है और घर के छोटे मोटे काम अधूरे पड़े रहते हैं। लिखी हुई चिट्ठियाँ मेज पर होती, बिजली के बिल का भुगतान नहीं हो पाता, छत के गमले के पौधों को पानी नहीं मिलता और घर में ख़त्म हो गई चीज़ें दिनों दिन तक घर में नहीं आती। अन्ना के लिए उसके साथ होने के असाधारण आकर्षण को, अपने भीतर की उस अराजक आकांक्षा को वो खुद भी समझना चाहता। कभी कभी वो ये भी सोचता कि उसका ये पागलपन ही उसे अन्ना से किसी दिन हमेशा के लिए दूर कर देगा। अम्मा की माँ की बात दूसरी थी लेकिन उसके पिता लड़के के भीतर हमेशा ही एक तरह के डर, संदेह और संकेत को पैदा कर देते। जब उसके पिता आते तब न अन्ना उसके यहाँ आ पाती और न वो अन्ना के घर जा पाता। जब वे आते तो अन्ना के यहाँ से पियानो और वायलिन से बुनी हुई कुछ बहुत उदास और सुंदर संगीत रचनाएं सुनाई देती और उनके सुनने की इच्छा, अन्ना के घर की तरफ देखने की लालसा उसे उन बूढ़े और बीमार दंपत्ति के घर ले जाती जहाँ पुराणों को पढ़ते हुए, पियानो और वायलिन को सुनते हुए वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता रहता। बूढ़ों के करीब से आती गंध से उसे अन्ना के किचन में पकते हुए गोश्त की गंध की याद आती। गर्मियों के मौसम के उन पेड़ों और फूलों की जिनकी गंध उसके घर के आसपास खड़े रिजर्व बैंक के पेड़ों से आती थी। एक और गंध थी जो अन्ना के उस शहर को छोड़ने के बरसों बाद जिंगो के संग रही थी। उस गंध को जून के अंतिम दिनों की एक शाम में बारिश से बचने के लिए पेवेलियन की छत के नीचे उसने सूंघा था उस शाम देर तक धूल उड़ती रही, पेड़ सरसराते रहे, उनके पत्ते झड़ते रहे और जब वे दोनों फायर ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँचे तब बारिश शुरू हो गई। वे दौड़ते भागते पवेलियन की छत तक पहुँचे। अन्ना अपने बालों को ठीक कर ही रही थी कि उसे पहले चूड़ियों के खनकने की और बाद में किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ें सुनाई दीं। शाम का अंतिम अंधेरा सीढ़ियों पर लेटा था। अन्ना को लगा कि वे आवाज़ें उसका भ्रम रही होंगी। वो इलाका शहर का बहुत निर्जन और कुछ कुछ रहस्यमय इलाका था, कुछ तो अपने घने और बूढ़े पेड़ों की वजह से और कुछ उस सदियों पुराने खंडहर से जिसे लोग बाग जादू महल कहा करते थे। दूसरी बार आवाज़ें लड़के को सुनाई दीं, स्त्री के हंसने की साफ और स्पष्ट आवाज़। तब वे कैंटीन की तरफ बिना आवाज़ किए हुए बढ़े थे। कुछ दूर जाकर ही लड़के ने शराब की गंध को पहचान लिया। कैंटीन के पीछे की खटिया पर एक स्त्री लेटी हुई थी और पवेलियन का चौकीदार उस स्त्री की पिंडलियों को सहला रहा था। उस दृश्य को देखकर ही अन्ना पीछे मुड़ी थी और लड़के के मुड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी। लड़का यदि कुछ देर तक वो सब देखता रहता तो सिर्फ उस औरत को पहचानने की खातिर, लेकिन कैंटीन की खिड़की से आती रोशनी में सिर्फ उस औरत की नंगी पिंडलियों, चौकीदार के झुके हुए गंजे सिर और पास रखी शराब की बोतल और गिलास को ही देखा जा सकता था। उस शाम वे दोनों अजनबी किस्म की तकलीफ साथ लिए हुए, मौसम, कॉलेज और रात हो जाने की बेहद औपचारिक बातें करते हुए अपने अपने घर लौटे। उन दोनों के साथ ही उस शाम के दृश्य की छायाएं देर तक बनी रहीं। उनकी पुस्तकों के पन्नों पर उस अज्ञात स्त्री की सांवली पिंडलियाँ चमकती रहीं, उनके आसपास के मौन को चूड़ियों की खनखनाहट तोड़ती रही। वो उनकी उम्र का एक ज़बरदस्त अनुभव बना रहा। उस अनुभव के उजाले में दोनों ने कुछ देखना चाहा, समझना चाहा। हालांकि बात की बहुत कम हो सकी मुलाकातों में कभी भी किसी ने भी उस शाम के अनुभव के अवसाद और अंधेरे का जिक्र नहीं किया था। तब लड़के ने भी याद किया कि पुराण में कुछ ऐसे अंश भी आते हैं कि जिन्हें बिना पढ़े ही छोड़ देने का आग्रह वो दक्षिण भारतीय बूढ़ा किया करता था। तब उसने अपने कज़िन के पास देखी गई कुछ अजीब सी पत्रिकाओं को भी याद किया था और मंदिर के पुजारी के उन निगाहों को भी जो पेड़ की परिक्रमा करती हुई उसकी माँ की देह पर थमी रहती थी। वो देह की दुनिया के दुख और दर्द थे जिसे हर देहदारी को भोगना और सहना था, लेकिन उस कौली उम्र में वे क्या ये सब समझ पाते? अन्ना तब ये भी समझ रही थी कि क्यों गिरजे में आता एक अधेड़ आदमी निरंतर उसको देखता रहता है, उसके करीब आने का प्रयत्न करता रहता है। क्यों मम्मी लिंडा को कॉलेज में उस शैली के कपड़ों में नहीं जाने देती जिस शैली के कपड़ों में वो घर में रहती है, और क्यों उसके पिता के आने के दिन मम्मी देर रात में नहाती हैं, कुछ ज़्यादा ही देर तक आईने के पास खड़ी रहती हैं, कुछ अधिक सुंदर हो जाती हैं। गर्मियों के अंतिम दिनों की उस व्यथा, व्याकुलता और वास्ता के बीच ही माँ ने बताया था कि अब डायस परिवार शहर छोड़कर जा रहा है और उन्हें उनके कर्ज को लौटाना पड़ेगा। ये कहकर माँ चिंता में डूबी थी और लड़का एक ऐसे अवसाद के बीचों बीच जो उसके दुःस्वप्नों में आता रहा था उसकी वेदना को बढ़ाता रहा था। अपनी माँ से अन्ना और उसके परिवार के दूसरे शहर में जाने के समाचार को सुनने के बाद अब लड़का जब भी अन्ना से मिलता तो कभी उसके इस तरह न मिल पाने के बारे में सोचने लगता। अन्ना समझती कि उनकी मित्रता के बीच पवेलियन की पिंडलियों ने एक तरह की तकलीफ, एक प्रकार की पराई पीड़ा को पैदा किया है, जबकि लड़का उस खबर को उससे सुनना चाहता था इसलिए अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं करता था। वे दोनों शाम की सैर के लिए भी निकलते, मौसम में हो रहे बदलावों को महसूस करते, कभी कभी नदी की तरफ की लंबी दूरी की सैर भी हो पाती और वे दोनों निरंतर काम करते मजदूरों को, उनकी मेहनत और मजबूरी को, शहर के उस इलाके की रात और रोशनियों को देर तक देखते रहते। वो प्रतीक्षा करता रहता कि किसी दिन वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने की बात कहेगी और तब वो सब कहेगा जो इन दोनों उसके भीतर बन रहा था, बढ़ रहा था और बस रहा था। जुलाई के शुरू होते होते बारिश होने लगी। दोनों ने ही मैट्रिक के इम्तहान दिए थे और दोनों ही फर्स्ट क्लास में पास हुए थे। रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन जब वो अन्ना के यहाँ बैठा हुआ बरसों पुराना एल्बम देख रहा था, अन्ना अपने कपड़ों को इस्त्री कर रही थी, तब लिंडा ने बताया था कि उन लोगों को जुलाई के अंत तक दूसरे शहर के लिए निकलना है। और तब उस शाम अन्ना के मेज पर झुके चेहरे पर देर तक रुकी उसकी निगाहें नम होने लगी थी। वो वहाँ कुछ देर और ठहरता तो शायद उसकी आँखें डबडबाने लगती और इसलिए लालटेन साफ करने की बात कहकर वो तुरंत अपने घर की तरफ गया था। अगस्त की शुरुआत में बादलों से घिरे हुए एक नीरस दिन की पीली दोपहर को वो अन्ना और उसके परिवार को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन गया। माँ ने उस परिवार को भेंट देने के लिए एक चादर पर कढ़ाई की थी। जिंगो ने स्वयं अन्ना के लिए डायनासोर की एक आकृति खरीदी थी और उस सुबह ही वो काल भैरव के मंदिर के पास के पेड़ से अन्ना के लिए कुछ जंगली फूलों को ले आया था। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम बातचीत हुई, वैसी तो एक भी बात नहीं जिसके करने या सुनने की आकांक्षा लड़के के मन में थी। ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा वो उन सूने बादलों को देखता रहा जिन्हें बरसना था। फिर बारिश के दिन आए, बारिश होती रही। अन्ना की एक चिट्ठी उस शहर से भी आई, नए शहरों के नए लैंडस्केप और नए लोगों का जिक्र लिए हुए। लड़के ने उसका जवाब नहीं दिया। वो पत्र लिखता तो बहुत कुछ ऐसा लिखता जिसका उसके लिए गहरा और निर्णायक अर्थ था, किंतु अन्ना के लिए उन बातों का अर्थ होने पर उसे संदेह था। धीरे धीरे लड़के का जीवन उसी तरह का हो गया जिस तरह अन्ना को देखने से पहले था। वो सुबह सुबह अपनी छत के गमलों में पानी डालता, कॉलेज जाने के पहले कुछ देर के लिए मठ के रीडिंग रूम में बैठता, कभी कभार उन बूढ़ों के लिए पुराण पढ़ता। कॉलेज जहाँ था वहाँ पेड़ ही पेड़ थे, और ऐसे भी पेड़ जिन्हें उसने पहली बार देखा था। शुरू शुरू में कॉलेज के चैपल के करीब बैठे हुए बरबस ही उसके सामने अन्ना का चेहरा आ जाता, लेकिन बाद में दूसरे चेहरों ने, दूसरी चाहनाओं ने अन्ना की याद को धुंधलाना शुरू कर दिया। अब उन गर्मियों के 20 बरसों के बाद जब नदी के पुल पर खड़ा हुआ लड़का 35 बरस का हो गया है, अब जब अन्ना जहाँ कहीं होगी 35 बरस की हो चुकी होगी, उन दिनों को याद करना, उन दिनों पर ठहरना अच्छा लगता है। इस तरह अतीत के किसी अंश पर रुकी निगाहें जीवन की अपनी उदासी और उम्मीद पर भी रुकने के लिए कहती हैं। अन्ना और जिंगों की साथ साथ बीती शामें, उनकी शाम की सैर, उनकी चिड़ियाघर की यात्रा, अन्ना की हंसी, लिंडा की खामोशी, बूढ़ों का बुढ़ापे में पुराण को सुनना, पेवेलियन में चमकती पिंडलियाँ, उससे कुछ अधिक कहती नजर आती हैं जितना ये सब 20 बरस पहले कहती थी। 20 बरस पहले उस लड़के की ही तरह मैंने भी अन्ना को चाहना चाहा था। मैंने उसे एक लंबी चिट्ठी उसके लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए लिखी भी थी, लेकिन पेवेलियन के चौकीदार ने कभी भी उस चिट्ठी को अन्ना के पास नहीं पहुँचाया, और मैं बहुत दिनों तक अन्ना के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। बरसों बाद मैंने और जिंगो ने अन्ना के लिए अपने अपने अनुराग और आकर्षण के बारे में, अपनी उम्र और शहर के उन दिनों के बारे में देर तक, दिनों तक बातें की थीं। अन्ना के मेरे अपने जीवन में कभी भी ना आने, मेरे जीवन की तरफ उसके क्षण भर के लिए भी ना देखने की एकदम अलग कहानी है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 15 बरस के लड़के और लड़की के साथ साथ बीते गर्मियों के दिनों की कहानी है, और उसमें कुछ भी जोड़ना वैसे ही बिखरी बिखरी सी बनती बिगड़ती इस कहानी को और अधिक कमज़ोर और ज़्यादा नीरस और निकम्मी करना होगा। मैं अपनी कहानी फिर कभी लिखने की चेष्टा करूँगा, और वो भी तब कि जब मैं इस बात का थोड़ा सा भी विश्वास कर सकूँगा कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई दिन इस जन्म में मेरे जीवन में कभी भी आएगा और मैं जिस तरह अन्ना को पाने में असफल रहा उसी तरह कहानी लिखने में भी असफल ही रहूँगा। एक उम्मीद ये भी थी कि मैंने पेवेलियन के चौकीदार को अन्ना के लिए पत्र दिया था, और एक उम्मीद ये भी है कि मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। उम्मीद, और शायद सिर्फ उम्मीद का ही वो सहारा है जो जीने की अंतहीन और अनिवार्य सी उदासी को जीवन में निरंतर उतरते और बढ़ते उजाड़ के कभी ना भी होने की उम्मीद बनाए रखती है।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।